نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، رب زدني علما، اللهم فقهنا في الدين، اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما، آمين يا رب العالمين. اس زمانے کے لوگوں نے بھی کیا کیا، ثم انتم هؤلاء تقتلون انفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم، پھر تم میں سے ہی لوگ ہیں، تمہارے میں سے ہی لوگ ہیں جو قتل بھی کر رہے ہیں لوگوں کو، اور تم نکال بھی رہے ہیں لوگوں کو گھروں سے. آپ ایک مسلم سوسائٹی کو دیکھ لیں، اپنے ملک کی سوسائٹی کو دیکھ لیں، پھر بتائیں کہ کیا یہ ہو رہا ہے یا نہیں ہو. ملکوں میں دیکھ لیں، وہ ملک دیکھیں کہ آج سیریا میں کیا ہو رہا ہے، اپنے ہی اپنوں کو نہیں مار رہے کیا، اور اپنے ہی اسلحہ دے رہے ہیں کہ اپنوں کو جا کے مارو. جو سپورٹ کرنے والے ملک ہیں وہ بھی اپنے ہی ہیں، وہ بھی مسلمان ہیں. کیا اپنے ہی اپنوں کو قتل نہیں کیا جب عراق اور ایران کی جنگ ہوئی، اور کئی اور چیزیں آپ دیکھیں، اپنے ہی اپنوں کو مارتے ہیں اور اپنوں کو گھروں سے نکالتے ہیں. تظاہرون علیہم بالاثم والعدوان، تم چڑھائی کرتے ہو ان کے اوپر ساتھ گناہ کے اور زیادتی کے، گناہ اور زیادتی کے ساتھ ایک دوسرے کے اوپر چڑھائیاں کرتے ہیں، اللہ کے حکم کو توڑتے ہو. اور اثم اور عدوان الگ الگ کیوں کہا گیا؟ اس لیے کہ اللہ کا حکم توڑا، گناہ کیا، حقوق العباد توڑا، حقوق العباد میں زیادتی کی، عدوان کیا. اور یہ وہ لوگ کیسے کرتے تھے، ان کی تھوڑی سی ہم ہسٹری دیکھ لیتے ہیں تاکہ ان کی بھی ہمیں سمجھ آ جائے. آج کے وقت میں تو آپ اپنے سامنے دیکھ رہے ہیں، میں تو مجھے تو بتانے کی بھی ضرورت نہیں ہے کہ کیسے یہ آئے تھے. آج سب کے سامنے ایک بچہ بھی سمجھ سکتا ہے کیسے کیسے آج خون خرابے ہو رہے ہیں، اور کیسے گھروں سے نکالا جا رہا ہے، کیسے در بدر کیا جا رہا ہے لوگوں کو. اب یہ دیکھنے کہ وہاں مدینہ کی سوسائٹی دیکھیں، یہاں سے یہ آیات اتر رہے ہیں. وہاں پہ تین یہودی قبائل تھے، مدینہ کے ارد گرد میں رہتے تھے، ان کے آؤٹسکرٹس میں، بنو قریظہ، بنو نذیر اور بنو قینقہ، یہ تین قبیلے تھے. ٹھیک ہے، اب کیا ہوتا تھا کہ یہاں پہ ان کے سپیلنگ کیسے ہوں گے، قاف، را، یا، زوئے اور ہا، جو ہوتی ہے حلوے والی نہیں دوسری، یہ بنو قریظہ. بنو نذیر زال سے نہیں ہے، زور سے بھی نہیں، دود سے بنو نذیر. اور بنو قینقہ، یہ تو آپ لکھ سکتے ہیں قاف یا نون قاف عین کے ساتھ. تو یہ جو قبائل تھے یہودی قبائل تھے، اور یہاں پہ دو عرب قبائل بھی تھے، ایک کا نام تھا اوس الف واسی اور ایک کا نام تھا خزرج، خا زے رے جین. اچھا، اب کیا تھا، اس زمانے میں بھی الائنسز ہوتے تھے، حلیف بن جاتے تھے، باہم یارانہ کہہ لیں، بیسٹ فرینڈس کہہ لیں، اس طرح بن جاتے تھے، یعنی قسم کھا کے دوستی کر لیتے تھے کہ بس اب ہم سمجھ لیں ایک ہیں، بس ہم کسی ایک کے اوپر بھی کوئی میلی نظر ڈالے گا، کوئی کسی ایک کے اوپر بھی، میرے دوست کے اوپر یا میرے ایلائی کے اوپر کوئی حملہ کرے گا تو سمجھ لیں اس نے میرے اوپر حملہ کر لیا، میں بھی اس کے ساتھ پھر وہ جنگ کروں گا جس نے میرے ایلائی کے ساتھ دشمنی کی یا اس کے ساتھ جنگ کی. اچھا، اب کیا تھا، اوس کا جو ہے نا بنو قریظہ کے ساتھ باہم دوستی تھی یا حلیف تھے، اس کو حلیف کہتے تھے، حلف لے کے دوستی کی جاتی تھی نا کہ بس ہم اور تم ایک ہیں. اچھا، اور خزرج کا بنو نذیر کے ساتھ ہم بالکل یارانہ دوستی جس کو کہیں گے. اور اسی طرح ایک بنو قینقہ بھی تھا، بنو قینقہ بھی حضرت کا ہی حلیف تھا. اچھا، اب کیا ہوتا تھا، جب اوس اور حضرت کے اندر کوئی لڑائی مار کٹائی ہوتی تھی، کوئی جنگ ہوتی تھی، تو اب یہ ان کے جو ساتھ یہودی قبیلے تھے، ایلائز تھے، اب ان کو بھی مشکل پیش آ جاتی تھی. ظاہر ہے بنو قریظہ کو جو قتل ہوگا یا وہ ہوگا، تو اب اوس اور خزرج میں لڑائی ہو رہی ہے، تو جب یہ بھی کودیں گے بیچ میں जो यहूदी इनके अलायंस हैं, तो आपस में ये भी तो लड़ेंगे ना, तो यहूदी यहूदी को भी तो कत्ल करेगा, ठीक है? तो कत्ल तो होगा, और जब एक के साथ दूसरे की जंग होगी और एक दूसरे के ऊपर खून बहाएगा तो कैद भी किया जाएगा, घरों से भी निकाला जाएगा, ठीक है? तो लड़ाई और सर खजरज में है, लेकिन अब उनके जो एलाइज हैं बनू नजीर और बनू कुरैजा, वो औस का साथ देते थे, बनु नजीर और बनु कुरैजा औस का साथ देते थे, और बनु कैन का जो थे वो खजरज के साथ। अच्छा, मैंने शायद पहले डिफरेंट कह दिया, इससे याद रखें, इसको याद करना भी एक आपके लिए जरूरी है, क्योंकि इनकी हिस्ट्री आप जब तक जानेंगे नहीं ना, आगे आयात समझ नहीं आती। फिर मैंने तो इस तरह याद किया कि देखें, बनु नजीर और बनु कुरैजा, काफ काफ वाले अलग अलग हैं, दोनों एक साथ नहीं है। बनु नजीर और बनु कुरैजा एक तरफ है, ठीक है, ये तो दो हो गए यहूदी कबीले। अब इनकी किस वाले अरब के साथ है, अरब कौन सा कबीला, एक औस है और एक खजरज है। अब दोनों में नजीर और कुरैजा में रा रा आ रही है ना, तो अब जिस अरब कबीले के साथ इनकी अलायंस होगा वो रा के साथ नहीं शुरू हो रहा, वो औस है, ठीक है। अच्छा, बनु कैन का इसमें कोई रा नहीं है, ये हजरत के साथ जाएगा, समझ आ गई बात? तो याद करने के लिए बस एक टिप आपको दे रही हूँ, क्योंकि वरना याद करना बहुत मुश्किल हो जाता है, बहुत कंफ्यूजन हो जाती है कौन किसके साथ था। तो बनू नजीर बनू कुरैजा रा रा वाले कबीले यहूद के एक साथ है, और उनका जो अलायंस है वो उस कबीले के साथ है जिसमें रा नहीं है, औस है, वो ऑपोजिट्स है ना, ऑपोजिट वो एक साथ होते, बनू कैनका और हजरत एक साथ। अच्छा जी, अब कई किताबों में आप देखेंगे कुछ और भी लिखा हुआ है, लेकिन ज्यादा सही यही मालूम होता है। अच्छा, अब क्या है, चढ़ाई करते हुए एक दूसरे, अब तुम्हें अल्लाह ताला ने हुक्म क्या दिया था कि एक दूसरे को कत्ल नहीं करना, तुमने अल्लाह का हुक्म तोड़ा, गुनाह किया। तुम्हें आपस में भी एक दूसरे के ऊपर हकूक थे, तुम आपस में भाई भाई हो, एक कौम के लोग, तुमने हकूकुल इबाद में भी यानी तल्फी की, तो तुमने एक ज्यादती भी की। वइन यअतुकुम उसारा तुफादूहुम, अब जो आपको मैंने बताया कि जब जंग होती है तो कैद भी होते हैं लोग, तो अब जाहिर दोनों तरफ कैद हुए लोग, तो कोई लोग उधर चले गए कोई उधर चले गए। अब मिसाल के तौर पे कोई बनू कुरैजा का बंदा जो है वो हजरत कैद करके ले गए, फॉर एग्जाम्पल दूसरी तरफ वाले अरब कैद करके ले गए इनके साथ लड़ाई हुई, तो अब ये सारे यहूदी जो है ना, इनकी चूंकि तौरात में लिखा हुआ था, इनकी शरीयत में हुक्म था कि देखो कोई भी यहूदी अगर कैद हो जाए कहीं तो तुम्हें उसको छुड़ाना है, तुम्हारे ऊपर जरूरी है। तो ये कहते थे लो हमारी तो शरीयत के अंदर ये हुक्म है, अब इसकी इतनी पाबंदी करते थे, चल पड़ते थे उसको छुड़ाने के लिए, ये रैंसम दे के ना, फिदिया दे के तो उसको छुड़ाने के लिए एहतमाम करते। अल्लाह ताला ने सुना वह मुहर्रम अलैकुम इखराजुहुम, हालांकि एट द फर्स्ट प्लेस तुम्हें तो इनका निकालना ही हराम था, तुमने इनको घरों से निकाला क्यों, पहले इनको दर बदर क्यों किया, मुल्क से निकालते भी हो अपने घरों उनके घरों से निकालते भी हो, कत्ल भी करते हो, उसमें तो तुमने नहीं सोचा कि तुमसे ये अहद लिया गया कि नहीं कत्ल करना नहीं घरों से निकालना, लेकिन जब वो कैद हो जाते हैं फिर तुम बड़े नेक बन के चल पड़ते हो, पारसा बन के चल पड़ते, हमें तो ये हुक्म दिया गया, हमने तो ये मानना, ये कैसी बात है, क्या आज ये हो रहा है, ऐसी कोई आपको शक्ल नजर आती है? जब इराक की मिसाल देखें, जब मुस्लिम ममालिक ने इजाजत दे दी थी कि हमारे ऊपर से जहाज उड़ा के लेकर जाओ और इराक पे हमला करो, और वहां पे जो मुसलमान जख्मी हो जाते थे ना, फिर लाके उनका इलाज कराना शुरू कर देते थे, मुसलमान जो है ना यहाँ पे जख्मी हो गए, पहले तुमने उनको वहां पे उड़ने की इजाजत ही क्यों दी कि हमारे ऊपर से जाओ और जाके उनके ऊपर हमला करो, एक गैर मुस्लिम को पहले उनका साथ दे लिया कि अपने मुसलमानों को जाके मारो, और उसके बाद फिर उनकी तैयारी भी करनी, उनके इलाज भी करने शुरू कर। कि हम किस तरह की, देखो डबल पॉलिसी अल्लाह ताला ने फरमाया कि वहुआ मुहर्रम अलैकुम इखराजुहुम, एट द फर्स्ट प्लेस पहले उनका निकालना ही तुम्हारे ऊपर हराम, तुम एक हुक्म मानते और एक नहीं मानते, उसके बाद वावेला कितना हम करते हैं ना, इतना वावेला करते हैं, पहले खुद ही गर्दने काटते हैं लोगों की, अपने लोगों की गर्दने काटते हैं, अपने लोगों को घरों से निकालते हैं, अपने लोगों को कैद करते हैं, अपने लोगों को हम उठा लेते हैं, अगवा कर लेते हैं और उसके ऊपर यानी तावान मांगते हैं और उससे अपनी जेबें भरते हैं, अपने लोगों को लूटते हैं, घसूटते हैं, ये सारा करके और उसके बाद कहते हैं गैर मुस्लिम तो मार रहे हैं और गैर मुस्लिम तो, और गैर मुस्लिम अगर कैद करके ले जाए किसी को तो फिर बहुत दुहाइयां देते हैं, फिर बड़े रोते हैं, अरे देखो फलानी जगह पे कैद करके हमारे मुसलमानों को रखा, तुम खुद क्या करते, तुम तो खुद गर्दने काट काट के और फिर उसकी फिल्में बनाते और फिर लगाते कि पूरी दुनिया देखे थे देखो हम कैसे गर्दने काटते। ये हमारा किरदार, इतनी उम्मत मुस्लिमा आज गिर चुकी है, इतना इनके ऊपर जवाल आ गया, ये इनका हाल बिल्कुल, ये आए थे आज 100% उम्मत मुस्लिमा के ऊपर, यानी ऐसे इनके ऊपर बिल्कुल फिट आ रही। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अकलमंद आदमी के लिए लाजिम है कि वो अपने जमाने के हालात से वाकिफ रहे, ये नहीं कि आप अलूफ जी रहे बैठी हुई, मुझे क्या पॉलिटिक्स है, मुझे क्या इससे, आपको पता होना चाहिए दुनिया में क्या हो रहा है, क्या बात हो रही है, आज के हालात क्या है, नहीं बस मैं तो अल्लाह अल्लाह करती, नहीं आपको पता कैसे चलेगा किधर, जब आप इसलाह करना चाहेंगी अपनी उम्मत की या उसके लिए खड़े होना चाहिए, आपको पता कैसे चलेगा जब तक आपको बीमारी का ही नहीं पता, आप तो डायग्नोज ही नहीं कर सकते, आपको तो हालात ही नहीं पता क्या हो रहे हैं, आपको क्या पता चलेगा कि दज्जाली वक्त कैसा आ रहा है, आपको क्या पता चलेगा क़यामत की कौन सी निशानियां पूरी हो रही हैं, आप अपने वो एक शैल में बंद होकर बस बैठे रहे, हालात से वाकफियत रखिए, क्या हो रहा है आपके इर्द गिर्द, कहाँ पे जुल्म हो रहा है, कहाँ पे ज्यादतियां हो रही हैं। तो ये देख लें कि वही चीज जो वो कर रहे थे यहूद, वो ही आज मुसलमान कर रहे हैं। अल्लाह ताला ने फरमाया अफतुमिनूना बिबाद अलकिताब व तकफुरूना बिबाद, क्या तुम मानते हो किताब के बाद हिस्से को और बाद का इनकार करते हो, पहले तो तुम खुद ही जाके दूसरों के साथ बैठ जाते हो और अपनों का ही खून बहाते हो, उसके बाद तुम्हें अपनों से बड़ी हमदर्दी आ जाती है और उनके लिए उठ खड़े होते हो, तो पहले तुमने दुश्मनों का साथ क्यों दिया, पहले तुमने गैरों का साथ क्यों दिया अपने का खून बहाने के लिए, पहले तुम खुद अपनों का खून बहाने क्यों खड़े हो जाते हो, तुम्हें तो वही मना किया गया था, लेकिन तुम क्या करते हो किताब के बाद हिस्से को तो ईमान लाते हो और बाद को इनकार करते हो, ये बहुत अहम बात है, इसलिए कि ये यहूद की नहीं रविश थी, आज मुसलमानों में घर घर यही फितना है, इनफरादी जिंदगी लेने या इज्तमाई लेने, बाद हिस्से पर जो हमारी मनपसंद हिस्सा है किताब का उसके ऊपर तो हम ही मान लाते हैं, कहते हम इसको मानते हैं और बाज का कुफर करते हैं, बाज का इनकार करते हैं, क्या कोई मुसलमान भी इनकार करता है किताब का, नहीं कोई भी नहीं मुसलमान इनकार करता, तो फिर यहाँ पे क्यों कहा गया कुफर करते हैं, क्या यहूदी कुफर करते थे अपनी तौरात का, नहीं वो तो यहूदी रह ही नहीं सकते थे अगर वो कुफर करते, कभी नहीं उन्होंने कहा हम तौरात के इस हिस्से को नहीं मानते, फिर यहाँ पे क्यों कहा गया कुफर करते हैं, हाँ कुफर का मतलब है अहकामात का इनकार करना, वो जुबान से नहीं कहते थे कि हम इनकार करते हैं हम नहीं मानते, नहीं बस टोटली उसको इग्नोर करते थे, टोटली इग्नोर करते थे, अमल ही नहीं करते थे, ऐसे जैसे एग्जिस्ट ही नहीं करते ये हमारे तौरात में, ऐसे इनसे यानी बिल्कुल ही ऐसे नजरें फेर लें, जहां पे तो अपना फायदा नजर आए, जहां पे तो इजी लगे, जहां पे तो कन्वीनियंस हो, वो उस हिस्से को तो ले लिया, और कहा दिखा कुरान में लिखा हुआ है ना देखे ये, जैसे मुझे एक दफा किसी ने कहा उनके बच्चियां मेरे पास पढ़ने के लिए आती थी, तो वैसे वो अपनी बच्चियों को मना करते थे कि हिजाब नहीं लो ये नहीं लो कोई नहीं पढ़ो, लेकिन जब उनकी बच्चियों ने उनके सामने जुबान दराजी की तो उन्होंने मेरे साथ फौरन शिकायत की कि देखें आप इनको बताएं कि अल्लाह का हुक्म ये है कि माँ बाप की फरमाबरदारी की जाए और उनके आगे जुबान ना खुलाए, तो मैंने सोचा ये इनको ये हुक्म इसलिए याद आया क्योंकि ये इनके अपने फायदे में जाता था, लेकिन जब बच्ची ने हिजाब लिया तो अल्लाह का ही वो भी तो हुक्म था, उसको वो मना कर रहे हैं, तो हम पिक एंड चूज करते हैं, हमारा काम क्या है किताब के जो हिस्से हमें पसंद है उनको तो पिक कर लिया अपने, उनको तो बड़ी खुशी से ले लिया, और जो हमें लगता है जो हम ना पसंद तो नहीं कह सकते मगर जो हमें लगता है कि हमारे लिए कन्वीनियंट नहीं है या इजी नहीं है या आज के जमाने में ये हमें आउटडेट लोग समझेंगे इसकी वजह से, उनको छोड़ देते हैं। जिनको हमें लगता है ये हुक्म आज अगर हमने मान लिया ना तो जमाने में पीछे रह जाएंगे, तो इसी को तो इनकार कहते हैं। हम मुंह से चाहे बोलें चाहे नहीं बोलें, ये इनकार ही है कि जब हम किताब के बाद अहकामात को हम अपने लिए ऐसे बना लें कि जैसे वो एग्जिस्ट ही नहीं करते। आज हम कौन से दीन के अहकामात को करने का शौक रखते हैं बताएं, खुद बताएं। जिसमें कोई रौनक मेला है, जिसमें कोई मजा है, जिसमें कोई फन हो जाए, जिसमें कोई कुछ हो जाए, फौरन कहते हैं इस्लाम में भी तो ये है ना, या जिसमें हमारा फायदा हो रहा इस्लाम में ये है ना, हमारा तो इस्लाम भी ये कहता है ना। आप देखते हैं बड़ा से बड़ा दुनियादार भी होगा ना, तो जो कुछ ही दीन की अलिफ बे तक नहीं वो जानता ना, फॉलो करता है ना, नमाज पढ़ता है, वो भी जब अपने फायदे की बात आती है ना तो आप बताएं ना हमारा इस्लाम भी तो ये कहता है ना। नहीं ये तो हमारा इस्लाम भी फिर कहता है, देखिए ये तो इस्लाम है भी, वो बाकी सारा टाइम तुम्हें इस्लाम कभी नहीं याद आता, बाकी सारी जिंदगी उठा के देख लो तो हर जगह इस्लाम ही के अहकाम को तोड़ा जा रहा है, इस्लाम ही का मजाक उड़ाया जा रहा है, इस्लाम ही के अहकाम की भजियां बखेरी जा रही। उस वक्त नहीं तुम्हें इस्लाम याद आता, उस वक्त तुम कभी नहीं कहता इस्लाम भी ये कहता, हमारा इस्लाम भी नहीं कहता, तब बहुत इस्लाम के ठेकेदार बन जाते हैं यहाँ पे अपनी फायदा हो। तो वो भी पढ़ते तो सारा ही थे मगर ईमान लाना, किताब को पढ़ने से ईमान लाना नहीं हो जाता कि हम कहें कि हम सारी सारा कुरान पढ़ते हैं हमारे सारे पे ईमान है। नहीं, जितना जितना आप उस पे अमल करते हैं वो ईमान लाना है, बाकी तो सिर्फ आप जुबानी कलामी बातें कर रहे हैं वो तो इनकार करना है। कैसे हो सकता है हम किसी चीज को माने भी और कहें भी कि जो है ना हमने नहीं अब इसके ऊपर अमल करना, कैसे हो सकता है। जब मान जाता है इंसान तो कहता है नहीं ठीक है अगर ये बात सही है तो फिर जाहिर है उसके ऊपर अमल करता है। तो अमल में वो उसको नहीं मानते थे, अमली तौर पे कुफर करते थे, इसको अमली कुफर कह सकते हैं आप, और इसी को यहाँ पे तकफूरून विवाद कहा गया। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिसने कुरान की हराम की भी चीजों को अपने लिए हलाल कर लिया उसका कुरान पे ईमान नहीं है। कुरान की कोई चीज है जो अल्लाह ताला ने फरमा दी ये नहीं करना, अब आपने अगर अपने ऊपर कह दिया ना कि नहीं मैं तो करूंगी, मैं तो करूंगी, क्योंकि देखिए इसके बगैर आजकल कहाँ जॉब मिलेगी, इसके बगैर कहाँ गुजारा होगा, इसके बगैर तो फिर देखें जिंदगी कितनी मुश्किल हो जाएगी। तो ये समझ लें आपने कुरान पे साथ कुफर करना। रब्बी अल्लाह ये जुमला कहते हुए भी ना डर लगता है कि अल्लाह आज हम देखें एक बात जहन में रखिएगा, ये उनकी बात नहीं हो रही, कुछ तो हमारे मुसलमान ऐसे हैं ना जो कि बिल्कुल उनको तो कुछ पता ही नहीं है, कोई शरीयत कुछ अलग बे नहीं पता, ना नमाज के होश, ना रोजे की खबर, ना कोई अल्लाह तौबा, ना कुछ अल्लाह का जिक्र, उनका तो बिल्कुल ही हाल गया गुजरा है ना। ये उनकी बात नहीं हो रही है, ये उनकी बात हो रही है जो अपने आप को शरीयत के बड़े अमल करने वाले समझते हैं, जो खुद को बड़ा दीनदार समझते हैं, इसीलिए तो वो ईमान रखते हैं ना बाज हिस्से पे किताब के, अमल भी करते हैं। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही उन्होंने कह दिया कि हम तो बिल्कुल सेकुलर हो गए, हम तो बिल्कुल ही दीन से निकले हुए हो गए, हमें कोई नहीं, नहीं ये दीनदार है ही ना। अब तो उमीनूना भी बात कर, तुम ईमान लाते बाज किताब के पास हिस्से पे, यानी कुछ पे अमल करते भी हैं, पूरे निकल नहीं गए थे बल्कि अमल भी करते हैं, मगर कैसा अमल है, पिक एंड चूज, पिक एंड चूज, पिक एंड, यहाँ से ले लिया, यहाँ से ले लिया, ये कर लिया, ये कर लिया, ये छोड़ दो, ये छोड़ दो, ये अगला ये कर लो, हाँ ये आसान है, ये कर लो, अच्छा ये छोड़ दो, पिक एंड चूज करते हैं। आज 99% मुसलमान क्या इसी में शामिल नहीं है? डर इस बात से लग रहा है कि जो बिल्कुल सब कुछ ही छोड़ चुके हैं उनकी तो बात ही अलग है ना। ये तो वो हैं जो अपने आप को दीनदार कहलाते हैं, क्योंकि वो नमाज पढ़ते होंगे, वो रोजा रखते होंगे, या जो ईमान रखते हैं बाज की तो कहलाते हैं, बाज बाज चीजों को करते भी हैं और कहते हैं हम देखे अमल तो कर रहे हैं ना, ये देखे हम ये भी करते हैं, ये भी करते हैं, ये भी करते हैं। जैसे बाज लोग नमाज रोजे में बहुत पाबंद है, बहुत पाबंद है, कुरान भी सुबह उठ के बड़े शौक से पढ़ते हैं,
लेकिन बाकी जिंदगी में क्या करते हैं, इसमें इस्लाम का क्या ताल्लुक, ये तो हमें अपनी मर्जी से गुजारनी होगी। हम जिसको अच्छा समझेंगे उसको करेंगे, जिसको नहीं अच्छा समझेंगे, आउटडेटेड समझेंगे उसको नहीं करेंगे ना। तो आप देख लें, ऐसे लोगों की अक्सरियत है हमारे अंदर, हम भी उन्हीं में से हैं। हमारा जो दिल चाहता है हम करते हैं, जो दिल चाहता है छोड़ो। अल्लाह ताला हमें माफ कर दे। अल्लाह ताला ने तो फरमाया ना कि उदखुलू फिस्सिल्मी काफा, इस्लाम में पूरे के पूरे दाखिल हो जाए। आधे आधे नहीं आ सकते, आधे नहीं, अगर आधे आओगे याद रखना तो क्या होगा, फरमा जजाओ मैं यफअलु ज़ालिका मिनकुम लखिज़्युन फिल हयात दुनिया, जो तुम में से ऐसा करेगा याद रखो उसकी उसकी सजा ये रुसवाई है, दुनिया की जिंदगी की जिल्लत है, शेम है उनके लिए, दुनिया की जिंदगी की ह्यूमिलिएशन है।